الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो जो भी आयत तिलावत की गई काफ़ी अर्से से, यानी कई हफ्तों से हम इन्हीं को पढ़ रहे हैं। मारुफुल कुरान जल्द नंबर 3 में से सूरह अनआम की आयत नंबर 65, 66 और 67 है ये। तो पिछले जुम्मे को भी इन्हीं पर ही बात जारी थी, और इसमें हमने ज़्यादा जोर जिस बात के ऊपर दिया था, तो वो क्या था तो बता सकता है कि पिछले जुमे को जिन लोगों ने बयान सुना तो उनके क्या समझ में आया कि एक पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा उसमें समझाने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई। वो किसी ने अपने जहन में अगर कोई नुक्ता बना के रखा हो तो वो बता दें। वैसे तो बड़ा ज़ाहिर मुश्किल है कि आप इतने 1 घंटे के बयान में से कोई नुक्ता अभी बता दें एकदम से सोच करके, लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी जहन में नोट किया हुआ है, कुछ लोग सुना है कि नोट्स बनाते हैं बयान में बैठ करके भी, तो लुब्बे लुबाब जो जुमे के बयान में जो इन आयात के पर हुआ था समझाया गया था। है किसी के पास? अच्छा, इन्होंने लिखा अताअत नफ्स के खिलाफ हो। तो नहीं, ये एक बहुत अहम पॉइंट था बेशक, कि अताअत होती क्या चीज है ना। ठीक है, तो अताअत वो चीज होती है जो कि नफ्स के खिलाफ हो, तो ये फिर किसी गैर की अताअत होगी, वरना जो चीज नफ्स की मर्जी के मुताबिक हो रही होती है तो वो नफ्स की अताअत होती है ना। ठीक है, गैर की अताअत यानी अल्लाह, ये हमारा नफ्स तो नहीं है ना, अल्लाह तो गैर है हमारा, हमारा गैर है यानी हमारा अंदर, अल्लाह हमारे अंदर तो नहीं है, अल्लाह तो अल्लाह है। तो अल्लाह की अताअत तो उस वक्त होगी ना जो हमारे नफ्स के खिलाफ हो, या रसूल की अताअत तो उस वक्त होगी जो हमारे नफ्स के खिलाफ हो वगैरह। उसी तरह उलिल अम्र मिनकुम की अताअत भी उस वक्त होगी जबकि हमारे नफ्स के खिलाफ हो, वरना नफ्स के साथ है, नफ्स की ही बात है, तो फिर तो अपने अंदर की ही अताअत हो रही है, बाहर की अताअत तो नहीं हो रही ना। अच्छा, और क्या कि हम अताअत का सही मफहूम नहीं समझते हैं। अताअत का मतलब इख्तलाफ, इख्तलाफ, अताअत का मतलब इख्तलाफ, ये तो बात समझ में नहीं आई। फोकस रहो, ये भी बात समझ में नहीं आई, फोकस रहो। अच्छा, झगड़ा खुद अजाब है या अजाब का सबब। ठीक है, हाँ ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। ये इन्होंने बिल्कुल सही बात जो कि साजिश के दिन में भी थी कि लुब्बे लुबाब जो था ना वो पिछले बयान का वो ये था कि जो झगड़े हम करते हैं क्या ये अजाब का सबब है कि झगड़ों की वजह से अल्लाह का अजाब आता है, या झगड़े खुद अल्लाह का अजाब है। ठीक है, क्या झगड़ों की वजह से अल्लाह का अजाब आता है तो हम कहेंगे कि झगड़ा अजाब का सबब हुआ, झगड़ा अजाब का सबब हुआ, क्या ऐसा है, या अल्लाह का, या ये कि झगड़ा खुद एक अजाब है, अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। ठीक है, तो कुरान मजीद की इन आयात से जो कि अभी फिर से तिलावत की गई, 65, 67 और 68, ठीक है, इनसे क्या पता चलता है कि झगड़ा खुद अजाब है, ये अजाब का सबब नहीं है, झगड़ा खुद अजाब है। ठीक है, फिर इसको बहुत सारी मुख्तलिफ दलीलों से और अकली दलाइल से और इसे इस बात को बस समझाया गया था कि भई ये ऐसा ही है, राइट। वैसे भी ये आयत काफी है दलील के तौर पर, तो ये आयत ही काफी है ना कि भई अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर अजाब जो है वो मुसल्लत करने पर कादिर हूं, ऊपर से आए, नीचे से आए, या तुम्हारे दरमियान में से आए। तो दरमियान में से अजाब को क्या कहते हैं? झगड़ा, ठीक है। और फिर ये उलिल अम्र की अताद जो है वो इसके अलावा था, वो उसको समझाने के लिए बातें हो रही थी कि उलुल अम्र की अताद भी अल्लाह की अताद में ही शामिल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद ही हुक्म फरमाया है अती अल्लाह व अती अर रसूली व उलिल अम्र कुम, ठीक है। तो तुम्हारे दरमियान जो अल्लाह ताला ने उल अम्र बनाए हैं, तो उनकी अताद करो, ठीक है। तो अब घर के अंदर जो है वो जहाँ औरतों की बात आएगी, तो चूंकि ये औरतों की क्लास है, ठीक है, तो औरतों के लिए उलुल अम्र मिनकुम कौन है? जो घर का बड़ा, जिसको मर्द कहा जाता है, ठीक है। बीवी के लिए शौहर, बेटी के लिए बाप, ठीक है। ये उलुल अम्र मिनकुम घर में अल्लाह ताला ने बनाए, ठीक है। औरत के लिए उलुल अम्र मिनकुम जो है वो उसका शौहर या उसका बाप हुआ, उसकी शादी से पहले बाप, शादी के बाद शौहर, ठीक है। शौहर के लिए उलुल अम्र मिनकुम कौन हुआ? भाई शौहर भी तो, उसके ऊपर भी तो यातायात का हुक्म आ रहा है ना, तो शौहर के लिए उलुल अम्र मिनकुम कौन हुआ? उसका शेख, ठीक है, या उसका जो शेख, तो उमूमी तौर पर दीनी उमूर के अंदर शेख कहलाता है उलुल अम्र मिनकुम, या दुनियावी उमूर के अंदर जो सियासी हुक्मरान है, या इदारे का जो इंचार्ज है, जिस इदारे में शोहर साहब आपके काम करते हैं, तो उस इदारे का जो इंचार्ज है वो उलुल अम्र मिनकुम हुआ शोहर साहब के लिए, ठीक है। उसी तरह से मुल्क की एतबार से देखा जाए, तो मुल्क का अल्लाह ताला ने जिसको हुक्मरान बनाया है वो उलुल अम्र मिनकुम हुआ, ठीक है। तो उलुल अम्र मिनकुम जो है फिर हर एक के लिए अलग डिफाइंड इंसान होता है, जो कि उसके दरमियान ही मौजूद हो, जो कि जिंदा हो, मुर्दा नहीं। जो मर चुके वो उलुल अम्र मिनकुम नहीं होते, चाहे वो हमारे दादा पीर रहमतुल्ला अलैह हो, दुनिया से जा चुके हैं दादा पीर रहमतुल्ला अलैह, वो उलुल अम्र मिनकुम नहीं हो सकते, ठीक है ना। उलुल अम्र मिनकुम तो वो होगा जो कि जिंदा है, दरमियान में मौजूद है तुम्हारे, वो उलुल अम्र मिनकुम होगा। तो उसकी भी नाफरमानी करोगे तो अल्लाह ताला का अजाब आएगा, ठीक है। अल्लाह की नाफरमानी यानी अल्लाह के हुक्म जो शरीयत में फराइज वाजिबात के तौर पर अल्लाह के हुक्म हैं, वो उनकी नाफरमानी करोगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। रसूलुल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करोगे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे तो जो अल्लाह के हुक्म है वो भी रसूलुल्लाह के जरिए से हम तक पहुंचे, तो फिर अल्लाह का हुक्म अलग और रसूलुल्लाह का हुक्म अलग कैसे हुआ, ठीक है। तो भाई अल्लाह का हुक्म वो हुआ जो रसूलुल्लाह ने बताया कि ये अल्लाह का हुक्म है, और रसूलुल्लाह का हुक्म क्या हुआ कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मामले के अंदर फरमाया कि भाई ऐसे करो, ऐसे ना करो, ठीक है। इंतजामी उमूर भी उनमें आ सकते हैं, और कोई और इबादत के उमूर भी आ सकते हैं, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म हो गए, ठीक है। और उलुल अम्र का हुक्म जो है वो हर दौर हर जमाने में जो भी उलुल अम्र है, तो उसका हुक्म उलुल अम्र मिनकुम के हुक्म में आएगा। तो तीनों की खिलाफ वर्जी के ऊपर अल्लाह का, तीनों की खिलाफ वर्जी, चाहे अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी, चाहे रसुल्ला के हुक्म की खिलाफ वर्जी, चाहे उलुल अम्र मिनकुम के हुक्म की खिलाफ वर्जी, इनके ऊपर अल्लाह का अजाब आता है, ठीक है। लेकिन उलुल अम्र मिनकुम के साथ एक शर्त लगा दी, उलुल अम्र मिनकुम के साथ एक शर्त लगा दी, वो क्या है कि ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। क्योंकि उलुल अम्र मिनकुम जो है ये तुम्हारे दरमियान का एक इंसान है, चाहे शौहर हो, चाहे शौहर का शेख हो, चाहे कोई इदारे का इंचार्ज हो, अगर वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई हुक्म देंगे तब जो है ना उनकी अताअत नहीं की जाएगी, ठीक है। चाहे वालिदैन हो, वालिदैन अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई हुक्म देंगे, अगरचे कि वो उलुल अम्र मिनकुम है, वालिदैन भी उलुल अम्र मिनकुम है, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई हुक्म देंगे तो उनकी अदात नहीं की जाएगी, ठीक है। तो उलुल अम्र मिनकुम के साथ शर्त लगा दी, लेकिन अल्लाह और रसूल के साथ कोई शर्त नहीं है, क्योंकि वही तो अल्लाह का हुक्म देने वाले, ये रसूल ही तो हैं, ठीक है। उसके साथ फिर कोई शर्त नहीं है कि रसूल का हुक्म तो मानना ही है, क्योंकि वो है ही अल्लाह का हुक्म, ठीक है। बहरहाल ये देखे सबको क्लियर होगी ये बात, नहीं है तो फिर भी पूछ लीजिए। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि पेज नंबर 363 जो किताब वाला है, और आपके सामने जो स्क्रीन शेयर हुई हुई है उसके ऊपर कौन सा वाला पेज स्क्रीन है। अच्छा शिया वाली बात, नहीं, ये जो आपने भी डिस्प्ले किया है ना, इससे आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पेज पे लेके आ जाए। तो हम बस हाँ, ये अल्लाह की रहमत वाली बात काफी सारी तफसील के साथ पिछली क्लास में हो चुकी थी। तो आगे यहाँ से हम चलते हैं कि एक आयत में इरशाद है वाअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, और दूसरी आयत में इरशाद है वला तकूनू कल्लदीना तफर्रकू वख्तलफू। हब्लुल्लाह के बारे में तुम यानी इस आपस में तफर्रका ना करो, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाह कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़े रहो। तो अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी जो है वो अल्लाह का कलाम है, कुरान अजीम शान है, ठीक है, या जिसको शरीयत भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको, शरीयत को जो है वो मजबूती के साथ पकड़े रहो और आपस में तफर्रका ना करो। तफर्रका ना करो का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ जो है ना वो शरीयत के अंदर अगर कोई इख्तिलाफ हो हमारे दरमियान, तो उस इख्तलाफ को जो है वो नफरत की हद तक मत लेके जाओ, लड़ाई झगड़े की इसके सबब तक इसको मत लेकर के जाओ, ठीक है। तो उन लोगों के जैसे मत मत बन जाओ जो के तफरका करते हैं और इख्तलाफ करते हैं। अच्छा, इसकी तशरीह जो है वो बहुत अहम है, जो कि ये जो दोनों आयात है ना, ये तशरीह से ही समझ में आए कि किससे मना किया जा रहा है, कौन से तफरके से मना किया जा रहा है, किस किस्म के तफरके से मना किया जा रहा है, तो ये तशरीह से समझ में आएगा जो कि मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने यहाँ पर लिखी है। तो वो हम पढ़ते हैं, फरमाते हैं कि इन तमाम आयात और रिवायात का हासिल ये है कि इख्तलाफ बड़ी मनहूस और मजमूम चीज है, ठीक है। यानी जब इख्तलाफ हो जाता है ना आपस में, तो ये कोई एंजॉय करने वाली चीज नहीं होती, या ये कोई लाइटली लेने वाली चीज नहीं होती कि कोई बात नहीं इख्तलाफ हो गया। जैसे पिछली क्लास में बात हुई थी कि जहां बर्तन होते हैं वहां पर आवाज तो आती है, तो इस वजह से कोई मसला कोई थोड़ी है भाई। बर्तन, आप बर्तन हैं या आप अशरफुल मखलूकात हैं, पहले तो ये डिसाइड कर लेना कि आप बर्तन हैं या आप अशरफुल मखलूकात हैं। अगर बर्तन हैं तो ठीक है भाई, शोर मचाते रहें, ठीक है ना, घर में झगड़ा करते रहें, लड़ाई दंगा करते रहें, क्योंकि आप बर्तन हैं, राइट, यू आर नो मोर देन बर्तन, ठीक है। लेकिन अगर आप बर्तन नहीं हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, इंसान हैं, और अपने लिए इंसान वाला मुकाम डिमांड करते हैं कि मुझे इंसान वाली इज्जत दी जाए, आखिर को मैं भी इंसान हूं, कहते हैं ना बहुत सारे लोग, आखिर को मैं भी इंसान हूं, तो भाई इंसान बने ना, राइट, और अपने आप को इंसान समझे ना, खाली डिमांड करना कि मैं इंसान हूं, मुझे मान लो कि मैं इंसान हूं, लेकिन हरकतें हरकतें किनके जैसी, बर्तनों जैसी, राइट, लिख लें इस बात को अगर अब तक लिखा नहीं है, हरकतें बर्तन जैसी कि जिधर दो बर्तन इकट्ठे हों वहां पे खनकना शुरू कर दें, वहां पे लड़ना, वहां पे शोर मचाना शुरू कर दें, तो ये तो बर्तनों वाली हरकत हुई ना, लेकिन डिमांड इंसानों वाली कि मेरे साथ इंसान जैसा सलूक करो, आखिर को मैं भी इंसान हूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि अगर इंसान है तो इंसान जैसा सलूक मिलेगा, और अगर बर्तन है तो बर्तन जैसा सलूक मिलेगा, फिर आपके साथ है ना, उनको मांजा जाता है, फिर बर्तन को मांजा जाता है, बर्तन को जो है वो ऐसे करके रख दिया जाता है, और उसको जो है वो शेल्फ के अंदर डाल दिया जाता है या रैक में डाल दिया जाता है। तो आपके साथ भी यही सलूक होगा कि आपको भी रैक में डाल दिया जाएगा, शेल्फ में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इंसान बने इंसान, तब इंसान जैसा सलूक होगा। तो कहने का मकसद ये है कि इट्स नॉट नॉर्मल, ये लड़ाई झगड़ा फसाद जो है वो किए चले जा रहे हैं, तो भाई ये मनहूस चीज है, ये मजमूम चीज है। आज
دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے مسلمانوں کی پستی اور بربادی کے اسباب پر غور کیا جائے تو اکثر مصائب کا سبب یہی آپس کا اختلاف اور تشتت نظر آئے گا. ٹھیک ہے, یعنی لڑ رہے آپس میں, تو ظاہر ہے جب لڑ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی سلوک بھی پھر برتنوں جیسے ہی ہوگا نا, کیونکہ برتن ہی آپس میں شور مچاتے ہیں, آپ کے ساتھ سلوک بھی برتنوں والا ہو رہا ہے. جب بھی مسلمان, ظاہر ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے, ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ عذاب ہم پر مسلط ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی گناہ کیے تھے, اللہ کے حکم, رسول کا حکم اور اولو الامر کا حکم توڑا تھا, تو یہ عذاب مسلط ہو گیا, لڑائی کا عذاب, کہ وہ قوم جس کا مرکز اتحاد ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا, اس کلمے کو ماننے والے زمین کے کسی خطے میں ہوں, کسی زمان کسی زبان کا بولنے والا ہو, کسی رنگ کا ہو, کسی نسل و نسب سے متعلق ہو, سب بھائی بھائی تھے, کوہ دریا کی دشوار گزار منازل ان کی وحدت میں حائل نہیں تھی, نسب و خاندان, رنگ و زبان کا تفاوت ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, یعنی بڑے مختلف قسم کے لوگ ہوتے تھے, کسی کے رنگ کیسا, کسی کی زبان کیسی, کسی کے جو ہے وہ خاندان کیسا, لیکن سب ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے, اور دنیا میں بھی عزت ملی ان کو اور آخرت میں بھی ان کو عزت ملی. ان کی قومی وحدت صرف اس کلمے سے وابستہ تھی, عربی, مصری, شامی, ترکی, ہندی, چینی کی تقسیمیں صرف شناخت اور تعارف کے لیے تھی اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے, یعنی شناخت و تعارف کی حد تک تو اللہ نے بنایا نا, اب اس کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے جو اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے آپ کا رنگ مختلف بنایا ہے, اللہ نے آپ کی جو ہے وہ شکل و صورت مختلف بنائی ہے, تو ایک ہونے کے لیے ہم کہیں کہ نہیں, ہم سب کا رنگ ایک کرتے ہیں, ایک پینٹ لے کر کے آتے ہیں, سب کو ایک ہی پینٹ کر دیتے ہیں تاکہ سب ایک نظر آئیں, کیا خیال ہے؟ نہیں, سب ایک نظر آئیں تو سب کو ایک ہی پینٹ کر دیتے ہیں لا کر کے. ٹھیک ہے نا, یس, کسی کی شکل جو ہے وہ لمبوتری ہے, کسی کی جو ہے وہ گول ہے, کسی کی جو ہے وہ چکور ہے, کسی کی ہے, تو سب کو کسی فیکٹری میں ڈال کر کے سارے انسانوں کو, اور اس فیکٹری میں جو ہے نا وہ ایک شکل بنا کر کے سب کو نکالتے ہیں اس فیکٹری میں سے. یہ نہیں کر سکتے نا, کیوں نہیں کر سکتے بھائی ایسا کام؟ کیونکہ اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شناخت کے لیے ہے, اب اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے, نہیں شناخت ہی ختم ہو جائے, سب کو ایک بنا دو تاکہ جھگڑے ختم ہو جائیں, نہیں, یہ نہیں, اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہم سے کہ سب کو ایک پینٹ کر دو. ٹھیک ہے, تو شناخت کے لیے شناخت کو رکھنا پڑے گا, لیکن انٹلیکچوئل اختلاف جو ہے, جو کہ جھگڑے کا سبب بن جائے, وہ والا اختلاف جو ہے وہ روکنا پڑے گا. بقول اقبال مرحوم, درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی, گھر اس کا نہ دلی نہ صفاہان نہ سمرقند. تو بس ٹھیک ہے, تم دلی کے رہنے والے ہو, تم جو ہے وہ صفاہان کے رہنے والے ہو, تم سمرقند کے رہنے والے ہو, لیکن جب کسی کام میں لگ جاؤ نا, تو پھر وہاں پر اس مقصد کے لیے تمہیں اپنی ان 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 اختلافات کو چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, تم ہو, تم دلی والے ہو, رہو دلی والے, لیکن کام میں تو پھر یہ نہیں کہ میں دلی والا ہوں تو اس وجہ سے میں بات نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے, میں سمرقند والی ہوں تو اس وجہ سے میں بات نہیں مانوں گی. ٹھیک ہے, یہ نہیں کر سکتے تم. ٹھیک ہے, آج دوسری قوموں کی دسیسہ کاریوں اور مسلسل کوششوں نے پھر ان کو نسلی اور لسانی اور وطنی قومیتوں میں بانٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی جملہ جو ہے نا, یہ جملہ بھی بس دیکھیں, جب کوئی لکھنے پہ آتا ہے نا, تو پھر وہ بہت ساری چیزیں لکھ دیتا ہے. تو اسے شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تین چار باتیں لکھ دی ہیں, بظاہر کنفیوزنگ, بظاہر کانٹراڈکٹری. ٹھیک ہے, بظاہر کانٹراڈکٹری, یہاں پر یہ جو جملہ ہے, اسکا مطلب کیا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر جو اختلاف ہوا وہ دوسروں نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, دوسروں نے پیدا کیا, مسلمانوں نے خود کو تھوڑی پیدا کیا. ٹھیک ہے, پچھلی کلاس میں ہم نے اختلاف کی ایک وجہ جو بظاہر نظر آ رہی تھی وہ کیا پڑھی تھی, جلدی سے بتایا کوئی, پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا اختلاف کی وجہ, کیا جو بظاہر نظر آ رہی تھی؟ पिछली क्लास में, एक हफ्ता पहले, अल्लाह की रहमत का हटना। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में भी हमने एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात पढ़ी थी जो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह की नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम की गलत समझने की वजह से जहन में बात आती कि इख्तलाफ की वजह तो अल्लाह, नऊज बिल्ला, अल्लाह का कसूर है, अल्लाह का कसूर है जिसकी वजह से इख्तलाफ पैदा होता है। ठीक है, तो पिछली क्लास में अल्लाह का कसूर, आज की क्लास के अंदर पहले तो मुफ्ती शफ शफी रहमतुल्लाह लिख रहे हैं कि हमारी बदआमालियों के नतीजे में अजाब हम पर मुसल्लत हो गया, तो अब किसका कसूर बना? हमारा कसूर। ठीक है, फिर उसके बाद फरमा रहे हैं दूसरी कौमों की दसीसा कारियों और मुसलसल कोशिशों ने फिर उनको नस्ली और लसानी और वतनी कौमियतों में बांट दिया, अब किसका कसूर बना? दूसरी कौमों का कसूर, है ना। तो विद इन वन पेज तीन मुख्तलिफ लोगों के कसूर आ गए सामने। ठीक है, तीन मुख्तलिफ लोगों के, एक अल्लाह, एक दूसरी कौमें, एक हम खुद। तो तालिबे इल्म के जहन में तो ये सवाल आता है और आना चाहिए कि भाई किसका कसूर है? अल्लाह का कसूर है कि दूसरी कौमों का कसूर है कि मेरा कसूर है? ठीक है, तो अब तालिबे इल्म के जहन में जब ये सवाल आएगा तो उस्ताद इसका जवाब देगा। ठीक है ना, क्योंकि उस्ताद को बिग पिक्चर नजर आ रही है, तालिब इल्म को बिग पिक्चर नजर नहीं आती। यही तो फर्क होता है तालिब इल्म में और उस्ताद के दरमियान, यही तो फर्क होता है, वरना हर तालिब इल्म खुद ही उस्ताद बन जाए, राइट। तालिब इल्म उस्ताद क्यों नहीं बन जाता, अपना उस्ताद क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि अभी वो छोटा है, अभी उसका इल्म कम है, उस्ताद से पूछना पड़ता है। इसी वजह से इवन तफसीर भी जो है ना, ये देखें हम तफसीर पढ़ रहे हैं ना, तो इवन तफसीर भी उस्ताद के बगैर नहीं पढ़ी जा सकती। ये समझाना मकसूद था सर में, इवन तफसीर भी, जो कि खुद ही जो है वो एक्सप्लेनेशन है। तफसीर क्या है? एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन को भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ रही है ना, बगैर एक्सप्लेनेशन के तो आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में नहीं आएगी। अगर गौर से बात सुनेंगे तब, वरना जल्दी से पढ़ के आगे बढ़ जाएंगी तो फिर तो फ्लैट ही रहेंगी, फिर तो वैसे ही कुछ समझ में नहीं आना। लेकिन गौर से पढ़ेंगी तो इवन एक्सप्लेनेशन भी मुश्किल हो जाएगी समझना। ठीक है, तो उस्ताद की जरूरत इतनी ज्यादा होती है। तो फरमाया कि दूसरी कौमों की दसी तक, भाई तीनों का मतलब एक ही है कि असलन जो है ना वो हमारे गुनाहों की वजह से, तो हम असल में रिस्पॉन्सिबल है, ना दूसरी कौम रिस्पॉन्सिबल है, ना अल्लाह ताला रिस्पॉन्सिबल है हमारे झगड़ों का, बल्कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं झगड़ों के। अच्छा, तो फिर उनमें से भी एक, हर एक कौम, यानी फिर आप ये मजीद बेसिकली मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने एक तरह से ना भाई रोना रो रहे हैं। ठीक है, हमारी बदआमालियों का रोना रो रहे हैं कि इतना हुआ कि हम लसानी और वतनी कौमियतों में बांट दिया, फिर उनमें से भी हर एक कौम और जमात अपने अंदर भी तशद्दुद और इंतशार का शिकार होकर मुख्तलिफ पार्टियों में बट गई। वो कौम जिसका शियार गैरों से भी अफ्व दरगुजर और ईसार था और झगड़े से बचने के लिए अपने बड़े से बड़े हक को छोड़ देती थी। ठीक है, वो कौम यानी ओवरऑल मुसलमान कौम जो है इतने बड़े लेवल के ऊपर भी अपने हक को छोड़ देती थी। ठीक है, आज तो क्या कि मियां बीवी का भी झगड़ा होता है तो ना शोहर जो है वो अपने हक को छोड़ता है, ना बीवी अपने हक को छोड़ती है, दोनों लगे हुए हैं अपने उसके ऊपर और शोर मच रहा है, डोरा पिट रहा है और ना यानी क्या क्या हो रहा है। भाई हक को जब तक नहीं छोड़ोगे तो उस वक्त तक मसला तो नहीं खत्म होगा ना। आज इसके बहुत से अफराद जरा जरा सी हकीर व जलील ख्वाहिशात के पीछे बड़े से बड़े ताल्लुक को कुर्बान कर देते हैं। ठीक है, तलाक हो जाती है, बीवी शौहर का ताल्लुक खत्म हो जाता है। ठीक है, हत्ता के मुरीद शेख का ताल्लुक खत्म हो जाता है, मुरीद साहब अड़ जाते हैं तो वो फिर शेख के साथ ही ताल्लुक खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो बड़े से बड़ा ताल्लुक कुर्बान हो जाता है। यही वो अगराज व अहवा का इख्तलाफ है जो कौम व मिल्लत के लिए मनहूस और इस दुनिया में नकद अजाब है। यानी दुनिया में ही इसका अजाब मिलना शुरू हो जाता है, आखिरत में तो बाद में मिलेगा ना, दुनिया में नकद अजाब इसको कहते हैं। हाँ, इस जगह ये समझ लेना भी जरूरी है अब यहाँ पर इल्मी बात थोड़ी सी आ रही है, इसका ताल्लुक वो इल्म से थोड़ा सा मुनासबत रखते हैं, उनको बात समझनी जरूरी भी है और आसान भी है उनके लिए समझना, कि ये समझ लेना भी जरूरी है कि वो इख्तलाफ जिसको कुरान मजीद में अजाब इलाही और रहमत खुदाबंदी से महरूमी फरमाया गया है, वो इख्तलाफ है जो उसूल और अकायद में हो या नफसानी अगराज व अहवा की वजह से हो, यानी बुनियादों के अंदर जो इख्तलाफ होता है ना, तो वो रहमत खुदाबंदी से महरूमी का सबब बयान किया गया है, या नफसानी अगराज व अहवा की वजह से हो, यानी बस मैं की वजह से इख्तलाफ हो। ठीक है, जो नबी अलैहिस्सलाम और मुशरिकीन के दरमियान जो इख्तलाफ था ना, वो मैं की वजह से इख्तलाफ नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम ने जो वो इख्तलाफ शुरू किया मुशरिकीन के साथ कि मत करो तुम बुतों की बस पूजा, वो क्यों इख्तलाफ शुरू किया, वो अल्लाह के कहने के ऊपर, अल्लाह के हुक्म पर, तो वो इख्तलाफ दरअसल नबी अलैहिस्सलाम की मैं की वजह से नहीं था, ठीक है, बल्कि वो अल्लाह की वजह से था। तो ये रहमत खुदाबंदी से महरूमी का सबब ना हुआ नबी अलैहिस्सलाम के लिए। हाँ, मुशरिकीन के लिए वो रहमत खुदाबंदी से महरूमी का सबब हो गया, क्योंकि अल्लाह तो उनका भी परवरदिगार था, ठीक है, अल्लाह तो मुशरिकीन का भी परवरदिगार था ना, तो उनको अल्लाह की बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि अल्लाह क्योंकि उनका परवरदिगार ही ये बात कह रहा है। नबी अलैहिस्सलाम तो खाली वास्ता है, परवरदिगार तो उनका भी है ना, तो उनको भी ये बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं की वजह से ये बात नहीं मानी, इस वजह से वो रहमत खुदाबंदी से महरूम हो गए। इसमें वो इख्तलाफ राय दाखिल नहीं है जो कुरान और सुन्नत के बतलाए हुए उसूल इज्तिहाद के मातहत फुरूई मसाइल में फुकहाए उम्मत के अंदर करने अव्वल से सहाबा व ताबईन में होता चला आया है, जिनमें फरीकैन की हुज्जत कुरान सुन्नत और इजमा से है और हर एक की नीयत कुरान सुन्नत के अहकाम की तामील है, मगर कुरान सुन्नत के मुजमल या मुबहम अल्फाज की तबीर और उनसे जुज़वी फरोई मसाइल के इस्तेखराज में इज्तिहाद और राय का इख्तिलाफ है, ऐसे ही इख्तिलाफ को एक हदीस में रहमत फरमाया गया है। ठीक है, अब ये उन्हीं को समझ में आएगा जिनको इल्म से मुनासबत है, और किसी को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इस वजह से मैं इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि ये दीन एसेंशियल्स फॉर वुमेन की क्लास। ठीक है, तो जिसको आ रहा है समझ, क्योंकि इसमें हर लेवल के खवातीन मौजूद, बिल्कुल इब्तदाई भी हैं जिनको नहीं है इल्म का इस किस्म का बैकग्राउंड, लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी खवातीन भी मौजूद है, तो इसमें ये चीज नहीं समझ में आएगी और ना समझाने की का फायदा है इसके अंदर, क्योंकि हम इस वजह से ये जो इबारत लिखी है ना, इस इबारत को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इबारत इटसेल्फ बहुत अहम है और जिसको समझ में आएगी उसके लिए बहुत फायदेमंद है। जामे सगीर में बहवाले नसर मकदसी वा बैहकी वा इमामुल हरमैन ये रिवायत नकल की गई है कि इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत इसलिए इख्तियार फरमाई गई कि इस उम्मत के उलमाए हक और फुकहाए मुत्तकीन, या हाँ फुकहाए मुत्तकीन, जो मुत्तकी फुकहा हैं, तो उनमें जो इख्तलाफ होगा वो हमेशा उसूले कुरान सुन्नत के मातहत होगा। ठीक है, और सिद्क नीयत और लिल्लाहियत से होगा, कोई नफसानी गर्ज जाहो माल की उनके इख्तलाफ की मुहर्रक नहीं होगी, यानी उनके दरमियान जो इल्मी इख्तलाफ होगा ना, इसको इल्मी इख्तलाफ कहा जाता है, तो वो कोई नफसानी गर्ज की वजह से नहीं होगा, नाम माल की मोहब्बत की वजह से वो इख्तलाफ होगा, बल्कि वो सिद्क नियत और लिल्लाहियत से वो इख्तलाफ होगा, इसलिए वो किसी जंग व जदल का सबब भी नहीं बनेगा। बल्कि अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनादी शारह जामे सगीर, जामे सगीर एक हदीस की किताब है अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की, तो उसके अंदर यानी उसकी जो शरह लिखी है ना इन्होंने अब्दुल रऊफ रहमतुल्लाह अलैह ने, तो उसमें उन्होंने लिखा कि फुकहाए उम्मत के मुख्तलिफ मसालिक का वो दर्जा होगा जो जमाने साबित में अम्बिया अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ शराए का था। शरीयतें, हर नबी के साथ यानी नबी जो है वो नई शरीयत लेकर के आते थे, लेकिन उस एक अल्लाह ही की इबादत के लिए, कि किसी के अंदर किसी के शरीयत में जो है वो दो नमाजें थीं तो किसी के शरीयत के अंदर पांच नमाजें थीं, है ना। ये तो सबको पता है, ये इख्तलाफ है ना। मूसा अलैहि सलाम की शरीयत में जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को शरीयत दी थी उसमें दो नमाजें फर्ज, और जो शरीयत अल्लाह ताला ने नबी अलैहि सलाम की दी उसमें पांच नमाजें फर्ज हो गई। तो ये इख्तलाफ हुआ ना शरीयतों का इख्तलाफ, ठीक है। तो इवन उलमाए हक के दरमियान जो इख्तलाफ है वो भी ऐसा ही है जैसे कि अंबिया के दरमियान शरीयतों का इख्तलाफ था, कि मुख्तलिफ होने के बावजूद सब की सब अल्लाह सबके सब अल्लाह ही के अहकाम थे। इसी तरह मुज्तहिदीन उम्मत के मुख्तलिफ मसलक उसूल कुरान और सुन्नत के मातहत होने की वजह से सब के सब अहकाम खुदा और रसूल ही कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि आम तौर पर नमाज के अंदर शायद आपने देखा भी हो कि जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पे अमल करने वाले होते हैं तो वो हाथ नाफ के ऊपर बांध के खड़े होते हैं, मर्द मर्दों में नाफ पे हाथ बांध करके खड़े होते हैं, और जो इमाम शाफी के मसले के फॉलोअर्स होते हैं वो जो है वो सीने के ऊपर हाथ बांध करके खड़े होते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के जो मसलक के फॉलोअर्स होते हैं तो वो हाथ भी ऊपर बांधते हैं लेकिन लेफ्ट साइड दिल के ऊपर उन्होंने अपने दोनों हथेलियों को आपस में पकड़ा हुआ होता है, अपने दोनों हाथों को आपस में दिल के साइड के ऊपर पकड़ा हुआ होता है, लेफ्ट साइड के ऊपर। तो ये जो इख्तलाफ है, तो भाई ये इल्मी इख्तलाफ है, और ये नबी अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ जो सूरतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बांधे थे, कभी ऐसे बांधा कभी वैसे बांधा कभी ऐसे बांधा, तो किसी ने उसको अडॉप्ट कर लिया, किसी ने इसको अडॉप्ट कर लिया, किसी ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये मुज्तहिदीन उम्मत के मुख्तलिफ मसलक इस तरह से बने, उसूल कुरान और सुन्नत के मातहत ही हुए, तो ये सब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ही कहलाएंगे। इस इज्तिहादी इख्तलाफ की मिसाल महसूसात में ऐसी है। महसूसात में का मतलब कि उन चीजों जिनको कि हम बाकायदा अपनी आंखों से देख सकते हैं ना या कानों से सुन सकते हैं, तो किसी ऐसी चीज से मिसाल दें जो कि हम आंखों से देख सकते हैं जिससे कि हमें मुज्तहिदीन के इख्तलाफ की हकीकत समझ में आ जाए। तो वो क्या मिसाल हजरत ने दी कि शहर की बड़ी सड़कों को चलने वालों की आसानी के लिए मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, ठीक है। हमारे मुल्क की सड़कों को ऐसे नहीं तकसीम किया जाता, सब एक ही लाइन, यानी सब लाइनों पर सब लोग चल रहे होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर बड़ी जैसे हाईवे होती है ना, खुसूसन बड़े मुल्कों के अंदर जो बड़ी हाईवेज होती हैं तो उनके अंदर तकसीम कर दिया जाता है कि यहाँ पर ट्रक्स चलेंगे, इस लेन के ऊपर ट्रक्स चलेंगे, इस लेन के ऊपर जो है वो चार व्हील वाली गाड़ियां चलेंगी, और अगर कोई मोटरसाइकिल वाला आया ना तो फिर वो अलग लेन पे चलेगा, ठीक है। तो ये मिसाल दे रहे हैं कि चलने वालों की आसानी के लिए मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक हिस्से पर बसें चलती हैं, दूसरे पर दूसरी गाड़ियां या ट्राम चलते हैं। असल में मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने जब ये तफसीर लिखी थी ना तो कराची में सड़कों का निजाम बड़ा अच्छा होता था, और ट्राम भी ट्रैम भी बाकायदा चलती थी, या ट्राम कहते थे उसको, वो भी चलती थी कराची में, ठीक है। तो वो उस जमाने की कराची की सड़कें जो है वो आज की अमेरिका यूरोप जैसी सड़कों की जैसे होती थी। 1950s की बात है ये, ठीक है। तो इस वजह से हजरत ने अपने शहर की सड़कों की मिसाल दी। फिर बाद में तो आपको पता ही है जो कराची वाले हैं उनको कि कराची की सड़कों का क्या हाल हुआ है। तो एक हिस्से पर बसें चलती हैं, दूसरी पर दूसरी गाड़ियां या ट्राम। इसी तरह साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिए रोड का अलाहिदा एक हिस्सा होता है। एक रोड के कई हिस्सों में ये तकसीम भी अगरचे जाहिरी तौर पर एक इख्तलाफ की सूरत है, मगर चूंकि सबका रुख एक ही सिमत है और हर एक पर चलने वाला एक ही मंजिल मकसूद पर पहुंचेगा, इसलिए रास्तों का ये इख्तलाफ बजाय मुजर होने के मुफीद और चलने वालों के लिए वसअत और रहमत है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग में डिवाइड करने से सबके लिए सहूलत हो जाती है लेकिन मंजिल सबकी एक ही रहती है, ठीक है। इसी तरीके से जो मालिकी हैं वो भी जन्नत की तरफ चल रहे हैं, जो शाफी हैं वो भी जन्नत की तरफ चल रहे हैं, जो हनफी हैं वो भी जन्नत की तरफ चल रहे हैं, जो हम्बली हैं वो भी जन्नत की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। अगरचे के बज़ाहिर इनके अमाल के अंदर, उनके अमाल के अंदर थोड़ा थोड़ा सा इख्तलाफ आपको नजर आता है, लेकिन रुख सबका एक ही है। यही वजह है कि आइमा मुज्तहिदीन और फुकहाए उम्मत का इस पर इत्तेफाक है कि इनमें से किसी का मसलक बातिल नहीं। ना हनफी जो है वो शाफी को बातिल कहते हैं कि नहीं वो तो जहन्नुम में जाएंगे, हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। और जो लोग उसकी पैरवी करते हैं उनको दूसरों के नजदीक गुनाहगार कहना जायज नहीं होता। आइमा मुज्तहिदीन और फुकहाए उम्मत के मजाहिब के इख्तिलाफ का हासिल इससे ज्यादा नहीं कि एक मुज्तहिद ने जो मसलक इख्तियार किया है वो उसके नजदीक राजह है, यानी प्रिफर्ड है, राजह है, ज्यादा तरजीह देता है वो अपने इस वाले मसलक को, मगर उसके मुकाबल दूसरे मुज्तहिद के मसलक को भी वो बातिल नहीं कहते, बल्कि एक दूसरे का पूरा एहतराम करते हैं। फुकहाए सहाबा व ताबईन और आइमा अरबा के बेशुमार हालात वाकयात इस पर शाहिद हैं कि फिकही मसलक बहुत से मसाइल में मुख्तलिफ होने और इल्मी बहसें जारी रहने के बावजूद एक दूसरे का मुकम्मल एतकाद व एहतराम करते थे। जंगो जदल और खुसूमत व अदावत का वहां कोई एहतमाल ही ना था। मजाहिब फुकहा के मुत्तबईन और मुकल्लदीन में भी जहां तक सही इल्म व दयानत रहे उनके भी बाहमी मामलात ऐसे ही रहे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उलमाए हक जो होते हैं तो कोई आलिम हक जो होता है वो हनफी होता है, कोई आलिम हक शाफी होता है, कोई हम्बली होता है, कोई मालिकी होता है, कोई आपस में लड़ाई नहीं हो रही होती इनके, कोई एक दूसरे को गालियां नहीं दे रहे होते, कोई एक दूसरे को जो है वो चप्पल उठा करके नहीं मार रहे होते, कोई जूते नहीं मार रहे होते, कोई जो है वो जुबानी जूते नहीं टिका रहे होते। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मसलक पे अमल कर रहे हैं, अपने मसलक पे, और हरम हरम के अंदर जैसे या किसी भी मस्जिद के अंदर अगर मालिकी इमाम नमाज पढ़ा रहा है तो पीछे हनफी भी पढ़ रहा होता है, शाफी भी पढ़ रहा होता है, और मालिकी भी पढ़ रहा होता है, सब पढ़ रहे होते हैं। हरम की जो मस्जिदें होती हैं वहां पर इमाम हम्बली मसलक के होते हैं ना, ठीक है, हम्बली मसलक के इमाम मस्जिद हराम और मस्जिद नबी के अंदर नमाज पढ़ा रहे होते हैं, पीछे जो है वो सारे इंडिया पाकिस्तान से आए हुए बड़े बड़े उलमा, मुफ्ती तकी उस्मानी जैसा आलिम हो या हजरत जी जैसा शेख हो, सब वहां पे जाकर के नमाज पढ़ रहे होते हैं उनके पीछे, ठीक है। ये तो नहीं कहते कि हम हनफी हैं तो हम मालिकी या हम हम्बली इमाम के पीछे क्यों नमाज पढ़ें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन ये उलमाए हक ऐसे ही होते हैं। ये इख्तलाफ है जो रहमत ही रहमत और लोगों के लिए वसत व सहूलत का जरिया और बहुत से मुफीद नतज का हामिल है। और हकीकत यही है कि फरूई मसाइल में रावियों का इख्तिलाफ जहां तक अपनी हद के अंदर रहे वो कोई मुजर चीज नहीं है। हद क्या चीज होती है? हद में रहे, हद में रहे का मतलब यही होता है कि वो दूसरे को बातिल कहना और दूसरे को जो है वो गंदे अल्फाज से पुकारना, ये हद से बाहर निकल जाना होगा। और बस इल्मी तौर पर इख्तिलाफ करना ये हद के अंदर रहना कहलाएगा, ठीक है। बल्कि यानी हकीकत यही है कि फरूई मसाइल में रावियों का इख्तिलाफ जहां तक अपनी हद के अंदर रहे वो कोई मुजर चीज नहीं है, बल्कि मसले के मुख्तलिफ पहलुओं को खोलने और सही नतीजे पर पहुंचने में मुअय्यन है, यानी मददगार है, मुईन है, मुअय्यन नहीं, मुईन है यानी मददगार है। और जहां दयानतदार उकला जमा होंगे तो ये मुमकिन ही नहीं कि किसी मसले में उनका इख्तिलाफ ना हो। ऐसा कानून तो या बेअकलों में हो सकता है जिनको कोई समझ बूझ ना हो, यानी बिल्कुल बेअकल किस्म के लोग, यानी कोई चीज पढ़ तो रहे हैं लेकिन अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो जाहिर इख्तलाफ भी कोई नहीं होगा। जैसे आप भी अगर जो है वो हम जो चीजें पढ़ रहे हैं तो उनको आप बिल्कुल बेध्यानी के साथ सुन रही हो, कुछ आपको आप गौर ही ना कर रही हो, बल्कि आपकी तवज्जो जो है वो चैटिंग के ऊपर हो, बहुत सारी होती है ना खवातीन क्लास तो ले रही हैं लेकिन साथ साथ चैटिंग कर रही हैं, ठीक है। तो अब ये चैटिंग करने वाली खवातीन जो है ये बेअकल खवातीन कहलाएंगी, ठीक है ना। अगर आप कर रही हैं तो खुद ही शर्म कर लें, छोड़ दें उस चैटिंग को, इधर मुतवज्जो हो जाए, इस वजह से मैं बोल भी रहा हूँ ये वाले अल्फाज, ठीक है। पता तो मुझे नहीं है कौन क्या कर रहा है, अल्लाह को तो पता है ना, अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहा है, तो अल्लाह ताला की वजह से आपको याद दिला रहे हैं कि आप चैटिंग छोड़ दें, क्लास की तरफ मुतवज्जो हो जाए। तो अगर तो आपकी तवज्जो किसी और तरफ है तो आप बेअकल कहलाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि बात क्या हो रही है। जब बात ही समझ में नहीं आ रही तो फिर जहन में कोई सवाल ही नहीं आएगा, जहन में कोई इख्तलाफ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वही फरमा रहे हैं कि ये वाली बात ना, कि बिल्कुल इख्तलाफ नहीं हो, तो ये तो वही हो सकती है जहां पे अकल इस्तेमाल ना की जा रही हो। ठीक है, या कहां हो सकती है बिल्कुल इख्तलाफ ना हो, ये कहां हो सकता है, दूसरी जगह कहां पे हो सकती है, कि बेदीनों में ये हो सकता है। ठीक है, क्या मतलब कि जो किसी पार्टी वगैरह की रियायत से खिलाफ जमीर राय में इत्तेफाक का इजहार कर रहे हैं। क्या मतलब, मतलब ये है कि अकल तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मुतवज्जो तो वो हैं, फोकस तो वो हैं, ठीक है, और फोकस होने की वजह से उनके जहन में इख्तलाफ तो आ रहा है कि भाई ये बात ठीक नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, लेकिन लालच की वजह से या किसी और नफसानी गर्ज की वजह से वो अपने इख्तलाफ को जो है वो छोड़ दें, नहीं, हम इत्तेफाक करते हैं, हम तो इख्तलाफ करते ही नहीं है। ठीक है, लालच की वजह से कोई छोड़ दे अपने इख्तलाफ को, तो वो तो बुरी चीज है ना, या बेअकली की वजह से उसको इख्तलाफ नजर ही ना आता, तो ये भी बुरी चीज है। तो इख्तलाफ तो होगा, अगर आप दयानतदारी के साथ अपनी अकल इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सी चीजें आपको सही भी नजर आएंगी, लेकिन बहुत सी चीजें आपको गलत भी नजर आएंगी। ठीक है, उसी चीज को तो फिर इख्तलाफ कहते हैं, जो चीजें आपको गलत नजर आ रही है उसी को तो इख्तलाफ कहते हैं। ठीक है, तो इख्तलाफ तो इंसानों के दरमियान होना लाजमी है अगर वो अकल इस्तेमाल करें और दयानतदारी के साथ इल्म हासिल करें, तो फिर तो इख्तलाफ होना लाजमी है। इख्तिलाफ राय जो अपनी हदूद के अंदर हो, यानी कुरान सुन्नत के कतई और एतिकादी मसाइल और कतई अहकाम में ना हो, सिर्फ फरूई मसाइल इज्तिहादिया में हो जिनमें कुरान सुन्नत की नुसूस साकित या मुबहम है, और वो भी जंगो जदल और लानुतान की हद तक ना पहुंचे, तो वो बजाय मुजर होने की मुफीद और एक नेमत व रहमत है। जैसे कायनात आलम की तमाम चीजों का शक्ल सूरत रंग बू और खासियत व मनफात में इख्तिलाफ है। ठीक है, वही पीछे जो मिसाल दी थी कि भाई किसी के रंग कैसा है, किसी का रंग कैसा है, किसी के शक्ल कैसी है, किसी की शक्ल डिफरेंट है, तो ये तो कायनात आलम की तमाम चीजों का शक्ल सूरत रंगो बू और खासियत व मनफात में इख्तिलाफ है। ठीक है, फलों के दरमियान किसी का ऐसा टेस्ट है, किसी का ऐसा टेस्ट है, किसी का ऐसा टेस्ट, अल्लाह ताला ने इख्तिलाफ बनाया है अपनी मखलूक के अंदर। हैवानात में लाखों मुख्तलिफ किस्में, बनी नौए इंसान में मिजाजों और पेशों, सनतों और रहन सहन के तरीकों में इख्तलाफ, ये सब इस आलम की रौनक बढ़ाने वाले और बेशुमार मनाफे के असबाब हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल एक तरह से अपनी मखलूक बनाई ही नहीं है, ना जाहिरी तरीके से एक तरीके से बनाया है, एक तरीके की मखलूक बनाई, और ना ही अकल के एतबार से सबको एक जैसा रखा। अल्लाह ताला ने खुद ही जो है वो लोगों को मुख्तलिफ शक्लों सूरत में बनाया, मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ बनाया। ठीक है, बहुत से लोग जो इस हकीकत से वाकिफ नहीं, वो मजाहिब फुकहा और उलमाए हक के फतवों में इख्तलाफ को भी हकारत की नजर से देखते हैं। उनको ये कहते सुना जाता है कि उलमा में इख्तलाफ है तो हम किधर जाएं, ठीक है, हम किधर जाएं, तो मौलवी ही आपस में लड़ते रहते हैं। वो ये जो बोल रहे होते हैं ना कि मौलवी आपस में लड़ते रहते हैं, तो वो हकीकत में मौलवी लड़ते नहीं रहते हैं, ठीक है ना, बल्कि वो अपने, ये जो लोग ये बात कर रहे होते हैं ना, ये अपने अमल ना करने का बहाना बना रहे होते हैं कि हम कैसे अमल करें, मौलवियों में ही इख्तलाफ होता है। भाई वो इल्मी इख्तलाफ होता है, उसको लड़ना नहीं कहते हैं। आप उन मौलवियों के जो उलमाए हक मौलवी होते हैं ना, वो इल्मी इख्तलाफ करते हैं, वो लड़ते नहीं। ठीक है, आप उनके पास जाए ना इल्म हासिल करने के लिए, तो वो आपको लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, बस इल्मी इख्तलाफ करते हुए नजर आएंगे, और इल्मी इख्तलाफ में कोई मसला नहीं है। तो ऐसे लोग जो है ना, वो बस बहाना बना रहे होते हैं खाम खा का, बस ये एक ना कि हम किधर जाएं, मौलवी तो लड़ते रहते हैं, हम किधर जाएं, उलमा में तो इख्तिलाफ है। हालांकि बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह किसी बीमार के मामले में डॉक्टरों तबीबों का इख्तिलाफ राय होता है, तो हर शख्स ये मालूम करने की कोशिश करता है कि उनमें से फनी एतबार से ज्यादा माहिर और तजुर्बेकार कौन है। ठीक है, अब एक और महसूसात में से मिसाल दे रहे हैं, बात को समझाने के लिए एक उन्होंने महसूसात में से मिसाल दी थी हाईवे की, ठीक है, कि हाईवे में मुख्तलिफ लेन्स होती हैं, ठीक है, लेकिन मंजिल सबकी एक ही होती है। अब ये दूसरी महसूसात में से मिसाल दे रहे हैं, जो कि और भी ज्यादा रेलेवेंट मिसाल है, ठीक है, कि डॉक्टरों और तबीबों में आपस में इख्तिलाफ होता है ना, ठीक है, कोई किसी तरह से डायग्नोसिस करता है, कोई किसी तरह से डायग्नोसिस, कोई हर्बल मेडिसिन से जो है वो इलाज कर रहा होता है, कोई होम्योपैथिक मेडिसिन से इलाज कर रहा होता है, कोई एलोपैथिक मेडिसिन से इलाज कर रहा होता है, ठीक है। तो जो मरीज होता है उसको ये वो ये मालूम करने की कोशिश करता है कि भाई इनमें से फनी एतबार से कौन ज्यादा माहिर और तजुर्बेकार डॉक्टर या तबीब है, ठीक है, बस उसका इलाज करते हैं, यानी उससे अपना इलाज करवाते हैं। दूसरे डॉक्टरों को बुरा तो नहीं कहते रहते ना, भाई मरीज जो है उसका काम है इलाज करवाना, तो तुमने एक दफा डिटरमिन कर लिया कि कौन सा डॉक्टर तुम्हारे लिए ज्यादा मुनासिब है, किस डॉक्टर को तुम ज्यादा एक्सपर्ट समझते हो, ज्यादा उसकी डिग्रियों पर तुम्हें एतमाद है, ज्यादा उसके बारे में तुमने अच्छी राय लोगों से सुनी है, तो अब आप उससे जाकर के अपना इलाज करवाते हैं, उससे जो है वो गाइडेंस लेते हैं, या आप बैठे हुए जो है वो दूसरे डॉक्टरों के बारे में उल्टे सीधे बातें करते रहते हैं। नहीं, मरीज को तो इसका टाइम ही नहीं होता, ठीक है। मुकदमे के वकीलों में भी इख्तलाफ हो जाता है, तो जिस वकील को ज्यादा काबिल और तजुर्बेकार जानते हैं उसके कहने पर अमल करते हैं, दूसरों की बदगोई तो नहीं करते फिरते हैं ना कि फलाना वकील तो ऐसा है, फलाना वकील तो ऐसा है। भाई जिस वकील से तुमने अपना ताल्लुक बना लिया, अब उसको अपना केस लड़ने दो, खत्म बात। यही उसूल यहां भी होना चाहिए। जब किसी मसले में उलमा के फतवे मुख्तलिफ हो जाएं, तो मकदूर भर तहकीक करने के बाद जिस आलिम को इल्म और तकवे में दूसरों से ज्यादा और अफजल समझें उसका इत्तबा करें, और दूसरे उलमा को बुरा भला कहते ना फिरें, ठीक है। आप इस चक्कर में पड़ते ही क्यों हैं कि दूसरे उलमा जो है वो क्या गलत कर रहे हैं, वो क्या ऐसा कर। भाई जिसको आपने नेक पाया, जिसको आपने समझ लिया कि हाँ इसके पास इल्म है और ये तकवा में भी एक मुकाम रखता है, बस अब आप उसकी जो है वो इत्तबा करना शुरू कर दें। हाफिज इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने आनाबुल मुकर्रीन में नकल किया है, यानी उनकी अपनी किताब जो है उसमें उन्होंने लिखा, माहिर मुफ्ती का इंतखाब और दर सूरत इख्तिलाफ उनमें से उस शख्स के फतवे को तरजीह देना जो उसके नजदीक यानी आम आदमी के नजदीक इल्म और तकवा में सबसे ज्यादा हो, ये काम हर साहिब मुआमला मुसलमान के जिम्मे खुद लाजिम है। यानी मेरे और आप जिसको कोई मुआमला पेश आ रहा है वो साहिब मुआमला कहलाएगा, ठीक है। अब आपको जो है वो मिसाल के तौर पर कोई मुआमला पेश आया कि जी मुझे जो है ना वो अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये एक मामला है कि भाई पैसा किधर इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अब आप जो है ना वो देखें कि कौन इस मामले में एक्सपर्ट आलिम है जिनसे मैं जाकर के पूछूंगी, ठीक है। तो अब ये तहकीक कर लें कि कौन सबसे एक्सपर्ट आलिम है और कौन सबसे नेक आलिम है, दोनों चीजें होनी चाहिए, एक्सपर्ट भी होना चाहिए और नेक भी होना चाहिए। जब आपने किसी को तहकीक के बाद समझ लिया कि हाँ ये हैं जिनसे कि मैं अपने मसले का अपने मामले को डिस्कस कर सकती हूँ, उनसे मैं सवाल पूछ सकती हूँ, ये नेक भी हैं और मुत्तकी भी हैं, ठीक है, तो ये तो हमारे ऊपर लाजिम था, यहां तक तो हमारे ऊपर लाजिम था। इसका काम ये नहीं है, यानी हमारा काम ये नहीं है कि उलमा के फतवों में किसी फतवे को तरजीह दे, ठीक है। क्या मतलब इस बात का कि जब कोई जो है वो मामला पेश आए तो अब ढेर सारे उलमा के फतवे अपने सामने रखे कि भाई ये क्या कहते हैं इस बारे में, ये क्या कहते हैं इस बारे में, ये क्या कहते हैं इस बारे में, और अब उन फतवों में से चूज करे कि मैं इस वाले फतवे को फॉलो करूंगी, ये नहीं, ये जायज नहीं, ठीक है। बल्कि क्या करना है, आलिम को चूज करो, फतवों में से चूज ना करो, उलमा में से चूज कर लो जो तुम्हारे लिए तुम्हारे नजदीक नेक है और इल्म वाला है, बस ये तुम चूज कर लो, ये तुम्हारे ऊपर लाजिम है, ठीक है। लेकिन ये ना करो कि जब कोई मामला पेश आए अब जो है वो इतने सारे फतवों को सामने रखो और फिर उसमें से चूज करो कि मैं कौन से वाले फतवे पर अमल करूं, ये नाजायज, ठीक ठीक है, इन दोनों के दरमियान फर्क समझना इंतहाई जरूरी है। तो ये नहीं है कि उलमा के फतवों में किसी फतवे को तरजीह दे, लेकिन ये उसी का काम है कि मुफ्तियों और उलमा में से जिसको अपने नजदीक इल्म और दयानत के एतबार से ज्यादा अफजल जानता है उसके फतवे पर अमल करे, मगर दूसरे उलमा और मुफ्तियों को बुरा कहता ना फिरे। ऐसा अमल करने के बाद अल्लाह के नजदीक वो बिल्कुल बरी है, यानी जब उसने एक दफा उलमा में से एक सही आलिम को चूज कर लिया, अब उसके फतवे पे अमल करे बस, उसके ऊपर और कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, यानी अगर कोई खुदा ना खासा गलती हो भी गई ना आप कि आलिम ने गलत फतवा दे दिया था, तो इसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, वो बरी होगा इस गलती से। अगर हकीकतन कोई गलती फतवा देने वाले से हो भी गई तो इसका वही जिम्मेदार, यानी मुफ्ती जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार नहीं है। खुलासा कलाम यह है कि ना हर इख्तलाफ मुतलकन मजमूम और ना हर इत्तेफाक मुतलकन महमूद व मतलूब है। अगर चोर डाकू बागी एक जमात बनाकर वहां मुत्तफिक हो जाए तो कौन नहीं जानता कि उनका ये इत्तेफाक मजमूम और कौम के लिए मोहलिक है। ठीक है, तो अगर डाकू लोग जो हैं वो मुत्तफिक होकर के एक ही तरीके से डाका डालना शुरू कर दें तो भाई इत्तेफाक तो हो गया उनके दरमियान, इख्तलाफ खत्म हो गया डाकुओं के दरमियान, लेकिन इत्तेफाक हो गया, तो क्या ये इत्तेफाक अच्छी बात है? डाकुओं में इत्तेफाक हो गया नहीं, वो तो बुरी बात है ना। तो वही बात बता रहे हैं कि हर इत्तेफाक तो अच्छा नहीं होता ना, बुरे कामों में इत्तेफाक हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और इसके खिलाफ जो सही व अमल आवाम या पुलिस वगैरह की तरफ से उस जमात की मुखालफत में होता है, वो हर अकलमंद की नजर में इख्तलाफ महमूद व मुफीद है। ठीक है, यानी बुरों के साथ इख्तलाफ करना, जो बुरा काम कर रहे हैं उनके साथ इख्तलाफ करना अच्छी बात है। ठीक है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन मक्का से इख्तलाफ किया था, वो इख्तलाफ अच्छी बात थी। ठीक है, मालूम हुआ कि खराबी इख्तलाफ राय में नहीं है और ना किसी एक राय पर अमल करने में है, बल्कि सारी खराबियां दूसरों के मुतालिक बदगुमानी और बदजुबानी से पेश आती, जो इल्म व दयानत की कमी और अगराज व अहवा की ज्यादती का नतीजा होता है। और जब किसी कौम या जमात में ये सूरत पैदा हो जाती है तो उनके लिए ये इख्तलाफ रहमत भी इख्तलाफ अजाब की सूरत में मुंतकिल हो जाता है, और मुसलमानों की पार्टियां बनकर एक दूसरे के खिलाफ जंग व जदल और बाज औकात कत्ल व क़िताल तक में मुब्तला हो जाते हैं, और एक दूसरे के खिलाफ लान तान और दिल आजार कलिमात को तो मजहब की हिमायत समझ लिया जाता है, हालांकि मजहब का इस गुलू और ज्यादती से कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये वही जिदाल है जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिद्दत के साथ मना फरमाया है, सही अहादीस में उसको कौमों की गुमराही का सबब करार दिया है। दूसरी आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरादरी यानी कुरैश मक्का की मुखालफत हक का जिक्र करके आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हिदायत फरमाई गई कि ये लोग जो आपसे वुकूए अजाब का मुअय्यन वक्त पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमा दीजिए कि मैं इस काम के लिए मुसल्लत नहीं किया गया, यानी मुझे इस काम के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि हर वक्त हर बात का एक वक्त अल्लाह के इल्म में मुकर्रर है, वो अपने वक्त पर हो रहेगी और इसका नतीजा तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अपने तो तरीके से काफी हट करके आज जो है वो इबारत को जल्दी जल्दी पढ़ करके बीच में फिर भी कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया, लेकिन अदरवाइज खिलाफे आदत काफी तेजी के साथ इस इबारत को मुकम्मल कर लिया, क्योंकि बहुत अरसे से ये चल रही है, और उसकी वजह खाली ये नहीं थी कि बहुत अरसा हो गया था, क्योंकि अरसा और भी हो रहा था, हमें कोई परवाह नहीं थी। ठीक है, हम और भी वक्त लगाने के लिए इसके ऊपर तैयार थे, लेकिन असल वजह ये बनी कि इसके अंदर जो इल्मी नुकात है ना वो हर एक को नहीं समझ में आएंगे, तो इस वजह से हमने बहुत ज्यादा वक्त इसके ऊपर नहीं लगाया। जिसको आ गया समझ में अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि उस समझ को वो याद भी रखेंगी, और जिनको नहीं आया तो वो भी अगर इस इबारत को दोबारा भी पढ़ लें ना एक दफा तो, और खुद ही इसको समझने की भी कोशिश करें, तो बहुत सारी चीजें उनको वैसे भी समझ में आ जाएंगी, और फिर कोई बात समझ में ना आए उसके ऊपर बिला तकल्लुफ सवाल वो कर लें, तो उससे फिर और भी ज्यादा बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह। बहरहाल यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.